તારીખ 26/12/1991 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા સોનગઢમાં થયેલ તત્વ ચર્ચા સળંગ નંબર 32.
में राग भी है और दूसरा पर्याय में तो बहुत सी बातें ख्याल में रह सकती है। हाँ, एक साथ रह सकती है। इसमें दो भेद है, एक उपयोगात्मक बात होती है और एक उपयोग के सिवा लब्धात्मक भी बात होती है। इसलिए एक साथ अनेक बात साथ ख्याल में रहती है। लब्ध मैंने हमारे, जैसे अपन कहते हैं कि अभी कोई काम करते हैं उस पर हमारा जो ज्ञान है वो काम करता है, जो हाथ में काम है उस पर जो ज्ञान काम करता है। तो बीच में कोई ऐसा कहेगा कि भाई ये बात भी करने का है, तो आप कहेंगे कि हमारे ध्यान में है लेकिन अभी नहीं। इसका मतलब क्या, मैंने आप मुख्य गौण करते हो ना, वो मुख्य गौण करते हो आप, तो जिसको मुख्य करते हैं वहां तो ज्ञान लगा, तो गौण किस आधार से करते हो कि जो दूसरी बात ख्याल में उसको गौण करते हो। और हरेक छद्मस्तक के प्रवृत्ति में मुख्य गुण तो होता ही है, बहुत सी बातें जानने में आती है लेकिन कोई किसी एक बात जो भी हैंडल करनी है उसी पर वो हमारा ज्ञान काम करने लगता है, दूसरे सब बातें गौण रह जाती है। तो गौण रह जाती है इसका मतलब ये है कि हमारे ज्ञान में तो है, तो दो बात हो गई ना ऐसा। हर वक्त ऐसा होता है, हर वक्त एक चीज मुख्य रहती है और सब गौण हो जाता है। हर वक्त अनेक बातें जानने पर भी कोई एक बात मुख्य रहती है और सब गौण रहता है, हर वक्त ऐसा ही रहता है। एक ही पर्याय में हर वक्त ऐसा रहता है। नहीं, ऐसा होता ही नहीं, फिर बड़ा क्या सवाल है, ऐसा होता ही नहीं। एक ही पर्याय नहीं होता, इसलिए तो उपदेश है कि आत्मा को मुख्य कर, आत्मा को मुख्य कर, राग को गौण कर, स्वभाव को मुख्य कर और राग को गौण कर। निश्चय की मुख्यता, मुख्य स्व निश्चय, मुख्यतः निश्चय गुरुदेव सूत्र आए शा माटे, क्योंकि एक समय में छे माटे, एक ज वक्ते छे माटे मुख्य गुण नो सवाल छे। जो एक वक्त नो होय तो मुख्य गुण करवानो प्रश्न रहेतो नथी, पहला आम करने पछी आम करे एम के, तो मुख्य गुण करवानो शा माटे के, तो पहला पछी नी वात करे। નહીં, એક જ્ઞાન ગુણની પર્યાય પણ સદાય છે અને ચારિત્ર ગુણની રાગની પર્યાય પણ સદાય જ છે દરેક જીવને, બે એક સાથે જ છે, પાછ વારા ફરતી નથી। જ્ઞાન બધા ગુણો પરિણમે છે, કોઈ ગુણ પરિણમતા નથી એવું તો નથી, તો જ્ઞાન ગુણ જાણવા રૂપે પરિણમે છે અને ચારિત્ર ગુણ રાગાદી ભાવે પરિણમે છે। કર્તાપણું છે એ મિથ્યા દ્રષ્ટિએ સંમત કરવું અને જ્ઞાન થયા પછી અકર્તાપણું રાખવું, તો પેલા કર્તાપણું હોય છે અજ્ઞાન દશામાં, જ્ઞાન થતા કરતા પણ થયું તો કાળભેદ થયો ને, પેલા અજ્ઞાની હતું પછી જ્ઞાની થયો, એમ વાત છે।
સદાય
ચારિત્ર ગુણ માં રાગ પણ હોય અને વિતરાગતા પણ હોય, એમાં ક્રમ પડે. અને સાધક દશામાં તો એક સાથે પણ આંશિક રાગ ને આંશિક વિતરાગતા પણ હોય, એક જ સમયમાં. લક્ષ છે તે જ્ઞાન નો પર્યાય છે. અને એવું શું થાય છે એ મહત્વનો મુદ્દો છે કે સ્વરૂપ ઓળખાય છે અને જેવું છે તેવું ઓળખાય છે, એટલે સિદ્ધપદ સ્વરૂપ છે આત્મા. તો જે સાક્ષાત સિદ્ધ પરમાત્મા છે પ્રગટપણે, તેવું સામર્થ્ય રૂપે છે, શક્તિ રૂપે એવું સ્વરૂપ છે એમ પોતાને ઓળખાઈ જાય છે. એટલે જે પોતાની પરિસ્થિતિ છે એ એકદમ બદલાઈ જાય છે, દીનતા છૂટી જાય છે, ઇન્ફિરિયોરિટી ઓફ કોમ્પ્લેક્સ ખલાસ થાય છે. કેમ કે હું પોતે જ સિદ્ધ સ્વરૂપ છું, ત્રણ લોકનો નાથ હું છું. આમ જેના લક્ષમાં આવ્યું એને ક્યાં દીનતા કરવાની, જ્ઞાનમાં આવે છે, જ્ઞાનમાં આવે છે, ઓળખાય છે, ઓળખાણ થાય છે. તમને કોઈ કીધું કે આ હીરો છે તો તમે કહો છો ઠીક હીરો છે, બધા એને હીરો જ કહેશે, કેમ કે દેખાવમાં હીરો છે માટે. પણ જે ઝવેરી છે એ આઈગ્લાસ મૂક્યા પછી એમ કહે છે કે આપ હીરો નથી, આ તો એક પથરો છે. તો બધાએ કહેલું હીરો ખોટો થઈ ગયો કે નહીં? ઓળખાણવાળાને જે ખબર પડી, ઓળખાણવાળાને મૂલ્ય થાય છે કે જો હીરો હોય તો આની આટલા લાખ કિંમત થાય આવડા હીરાને, અને પથરો હોય તો એને આ 2-5 રૂપિયામાં વેચાઈ જાય, નહીંતર 2-5 લાખ આવે. ઓળખાણનો જે વિષય છે એ પ્રેક્ટિકલ સાઈડનો છે. આપણે એમ કહીએ કોઈ માણસ આપણને, કોઈ માણસ તમારા પરિચિત વ્યક્તિની ઉલટી સુલટી વાત કરે તો તમે શું કહો? ભાઈ હું ઓળખું છું, મને સમજાવવાની જરૂર નથી, અજાણ્યો માણસ માની લે. ઓળખાણ શું ચીજ છે પ્રેક્ટિકલી જોઈ લે તમે, કે શું બીનું જ્ઞાનમાં એવું કે જેના પરિચયથી ઓળખાણની સાથે ખાતરી ઊભી થાય છે કે આ આમ જ છે એવી એક. એટલે કૃપાળુદેવે 751માં એને શું લખ્યું કે સ્પષ્ટ પરમાર્થની સ્પષ્ટ અનુભવાંશે પ્રતીતિ, એનું નામ સ્વરૂપ નિશ્ચય છે, એનું નામ ઓળખાણ છે, એનું નામ લક્ષ થયું એમ છે કે પ્રતિભાસ થયો એમ છે. સ્પષ્ટ અનુભવાંશે, જો વેદન કા જો અંશ હૈ, ગુજરાતી માં એમ ચલતા ને થોડા ખ્યાલ નહીં રહેતા આપકા, આપકો ભી થોડા તકલીફ તો પડેગી અમારી ભાષા મેં. તો વર્તમાન મેં જો વેદન અંશ હૈ, ઉસ વેદન કો વેદન જ્ઞાન કે વેદન કે રૂપ મેં ગ્રહણ હોતે, જો પરિચય હોતા હૈ, જો પહેચાન હો જાતી હૈ, ઉસ પહેચાન સે લક્ષ બન જાતા હૈ. જૈસે અપને ઘર મેં એક ઇતના પથ્થર પડા હૈ, કચ્ચા પથ્થર એસા હૈ જિસકો ઝવેરાત કી ભાષા મેં, ડાયમંડ માર્કેટ મેં જિસકો રફ બોલને મેં આતા હૈ, ઓર વો બચ્ચા ભી ખેલતા હૈ ઇસકે સાથ, ઓર કભી હમારી ભી ઠોકર લગતી હોય તો એક કોને મેં સે દૂસરે કોને મેં ચલા જાતા હૈ. क्योंकि हम जानते नहीं है कि ये क्या चीज़ है। अगर कोई हमारे यहाँ हमारा संबंधी चोरी आता है, देखता है कि भाई इसकी तो करोड़ों की कीमत है, ऐसे घर में कैसे आप रखते हो उसको, फिर क्या करोगे आप? सीधा ही उसको तिजोरी में या कबर्ड में रख दोगे। क्योंकि इसका एक ग्राम भी, इसकी एक कांकरी कम हो जाएगी तो लाखों का फर्क पड़ेगा। तो ऐसे एक मूल्य आता है, पहचान में मूल्य आता है, नहीं पहचाने तो ठोकर लगाते हैं। ऐसी बात पहचान में, ऐसी बात में
पहचानने के लिए अनुभव को अवलोकन करना
चाहिए। अवलोकन पद्धति में क्या है कि ये अनुभव को, अनुभव पर उपयोग को ले जाना है। हमारे परिणाम में जो भी पर्यायों का अनुभव हो रहा है, विभिन्न प्रकार के भावों का, उस पर हम उपयोग को ले जाते हैं, चालू अनुभव पर। तो हमें पता चलता है कि हमें किस चीज़, क्या क्या भावों का, किस किस भावों का, कैसे कैसे भावों का हमें अनुभव हो रहा है। तो ऐसा एक परिचय चलता है, अपने भावों का परिचय जब चलता है, उसमें से पहचान आती है। पहचान का प्रोसेस बिना परिचय और कुछ है ही नहीं जगत में या साइंस में। पहचान परिचय से ही होती है, बिना परिचय किसी की पहचान हो ही नहीं सकती, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे हीरा हो, चाहे अनाज हो, चाहे चाय हो, कुछ भी नहीं, कि भी कोई भी चीज हो या व्यक्ति हो, ये परिचय का विषय है, पहचान करना।
यहाँ पर तो पहचान करने वाला भी वही, और इसकी पहचान करना है वो भी वही।
वो तो कहते हैं कि अपने आप को अपनी पहचान नहीं है, हमारा गलत कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन जिसको कहते हैं अपन, कि मैं तो फलाना आदमी हूँ, ये मिसकंसेप्ट है बिल्कुल। कोई मानेगा जगत में मैं फलाना, मैं, सारी दुनिया मुझे इस नाम से पुकारती है, इस नाम से जानती है, और मैं भी मानता हूँ। ज्ञानी कहते हैं कि ये मिसकंसेप्ट है, तो कंसेप्शन है अलग है, पूरा का पूरा। ये बात
कैसे करें
है?
गलत को सही कैसे करें?
बस तो परिचय से ही निर्णय बदलना है, तो सही ढंग से निर्णय बदले। हमने पत्थर को हीरा माना है या हीरा को पत्थर माना है, तो क्या करेंगे? कि हमारी पहचान करने की शक्ति संपन्न होगी तो बाद में कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। दूसरे पदार्थ का तो मूल्य है, जगत के पौद्गलिक पदार्थ की तो कीमत बहुत है, और इसलिए कीमत है कि ये सुख के कारण है, ये सुख देने वाले हैं, यहाँ से सुख मिलता है, ये सब कंसेप्शन है, अपना निश्चय है वो, तो उस निश्चय में दीनता के बिना क्या है?
दूसरा प्रश्न, यहाँ बैठे बैठे बात सुनते सुनते तो ठंडी लग रही है, तो इसमें परिणाम का अवलोकन कैसे?
हाँ, परिणाम में ये अवलोकन करें कि लगती है या जानने में आती है, ठंडी लगती है या ठंडी का ज्ञान वास्तव में क्या है, करो अवलोकन। ऐसा लगता है, लेकिन अब तो आपने ये सुना कि ये बात वैज्ञानिक तौर से संभव नहीं है, आप ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, तो क्या ज्ञान ठंडा होता है क्या? अगर ज्ञान को ठंडी लगती हो या आत्मा को ठंडी लगती हो तो ज्ञान ठंडा होना चाहिए। ज्ञान ठंडा होता है क्या? जरा गौर से देखो कि ज्ञान में वो जानने की चीज है या लगने की चीज है। लगती है वो भ्रांति है। वो भ्रांति को सही मान लिया तो उसी से दुख होता है। भ्रांतिगत स्थिति में दुख की उत्पत्ति है। दुख का कारण कल्पना, केवल कल्पना है। मेरे जेब में फालतू पेपर्स पड़े हैं, मैं समझता हूँ कि नोट है, फिर क्या इससे कोई चीज मिलने मिल जाएगी क्या, बाजार में कोई देंगे? ये तो कागज के टुकड़े हैं, ले जाओ वापस, ये बात हो जाएगी। उस वक्त धक्का लगेगा। हमने मान लिया कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा घर है, ये मेरा सब कुछ है, माना। लोगों ने भी कहा कि ठीक है, आपका ही है, हमारा थोड़ा है, अधिकार तो आपका चलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको धक्का लगेगा इसका, एक समय ऐसा आएगा कि इसका धक्का हमें लगने वाला है, क्योंकि ये कल्पना है। कल्पना से दुख आएगा और क्या। भ्रांति ज्ञान की विपरीत पर्याय है, तो भ्रांति स्वयं ज्ञान की विपरीत पर्याय है। प्रश्न में ख्याल नहीं है क्या पूछा है। भ्रांति स्वयं ही ज्ञान के विपरीत पर्याय है। भ्रांतिगत ज्ञान ज्ञान के विपरीत पर्याय है।
ज्ञान
नहीं उल्टा जाना, उसका नाम भ्रांति है। ज्ञान का विपर्यास को ही भ्रांति कहते हैं। जैसे रस्सी पड़ी है और जानते हैं सर्प, भय होगा, भ्रांति से भय हुआ है, भ्रांति से दुख हुआ है। भ्रांति है दुख के उत्पादक है। ज्ञान की भ्रांति का फल दुख है। सही ज्ञान करने से, सही अनुभव करने से। रस्सी को सांप माना, रस्सी को रस्सी जाने, बात खत्म। उतनी बात। इसलिए तो ये ज्ञान अभ्यास है, स्वाध्याय सत्संग। क्यों कि हमारी जितनी गलत फहमियां है वो सही जानने से, जानकारी में छूटे, और सही अनुभव करने से, अनुभव से छूटे। दो तरह की हमारी गलत फहमी है, एक जानकारी की और एक अनुभव करने की। तो जानकारी की जो भूल है वो तो जानकारी से मिटेगी, और अनुभव की भूल अनुभव से मिटेगी। दो प्रकार की भ्रांति होती है, एक अनुभव में भी भ्रांति होती है और एक जानने में भी भ्रांति होती है। दोनों ज्ञान, दोनों प्रकार से ज्ञान में ही भ्रांति होती है। तो दोनों, जो समझदारी है, समझ है, विचार शक्ति है, इससे समझ की भूल छूट जाती है कि भाई सही बात तो ये है। तो बात रही फिर अनुभव की भूल के, हमारा अनुभव में कौन सी गलतियाँ, तो अनुभव से छूटती है, वो जानकारी से नहीं छूटती है। वो तो आपके कलश में आया दोपहर को कि सब लोग जानते हैं कि देह और आत्मा भिन्न है, क्योंकि ये तो जगत में एक ओपन हार्ड फैक्ट है कि देह और आत्मा भिन्न होती है और शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है। ये हमेशा की बात रही। तो देह और आत्मा भिन्न है कौन नहीं जानते, सब जानते हैं कि आत्मा वहाँ से चला गया, कहीं चला गया पता नहीं, लेकिन है नहीं, वो बात फाइनल है। डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देते मिल जाता है। तो जब देह और आत्मा भिन्न है, जाना तो जाना लेकिन अनुभव नहीं किया, तो जानकारी काम में नहीं आती, जानकारी का उपयोग नहीं होता है। इसमें उपयोग नहीं होता तो दुख चालू रहेगा, सुख मिलेगा नहीं, शांति आएगी।
इसमें तो बहुत से जानने के पदार्थ हैं, पूरा वर्ल्ड लेकर, पूरा वर्ल्ड में तो बहुत सी चीजें हैं। हमको तो अपनी प्रयोजनभूत जानकारी की भूल नहीं मिटानी है, तो क्या अभ्यास करना पड़ेगा?
बस अपना अपना प्रयोजन तो सुख दुख का है, तो हमें जहां से सुख दुख होता है उतना प्रयोजन पदार्थ हमारे लिए हो गया, उसमें जानकारी का विपर्यास भी हम मिटावे और अनुभव का विपर्यास भी मिटावे, बात सीमित हो गई हमारे लिए, हमारे सारे जगत से क्या लेना देना है। हाँ वो तो बात चली कि जानकारी उनके भूल में तो ये तो आत्मा शरीर भिन्न भिन्न है, राग भिन्न है, स्वभाव भिन्न है, जो प्रयोजन भूत नव तत्व ले लो, कौन से उपादे हैं, कौन से हे है, तत्व नव तत्व की दृष्टि से समझ लें, हे उपादे तत्व, ये जानकारी का विषय हो गया। और अनुभव में तो हम अपना ज्ञान का अनुभव सिवा कुछ अनुभव कर सकते नहीं, सिवा ज्ञान जो भी हमें अनुभव करते हैं वो हमारी गलती है, भूल है, ये तो कदम कदम पे हमें अनुभव हो रही है। अभी ठंड चल रही है तो ठंड का अनुभव हमारी गलती है, ये अनुभव की भूल है। अनुभव से निकले, अनुभव की भूल तो अनुभव से निकले और कोई इलाज नहीं है, अनुभव को हम देखे, भूल तो देखने से निकलती है, अनुभव को देखें, अनुभव की तलाश करें, हिसाब में भूल आते तो हिसाब को देखना पड़ता है, बार बार देखो भी ये उपरांत क्यों नहीं मिलती है, शाम को इतना दिया इतना लिया, ये बैलेंस कहीं ना क्यों नहीं मिलती है, कहीं भूल है, देखो बार बार उसको, कहीं टोटल में तो भूल नहीं किया, और जगह तो भूल नहीं किया, लिखने में तो भूल नहीं किया, बस शक्ति छे ए अनादि अनंत पदार्थनी प्रॉपर्टी छे, प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, ज्ञान आनंद अस्तित्व अस्तित्व ये बधी आत्मानी प्रॉपर्टी छे, पण राग ये आत्मानी प्रॉपर्टी नथी, मनुष्यपणो ये आत्मानी प्रॉपर्टी नथी, एक थोड़ा समय माटे आत्मानी अवस्था में होय छे, व्यक्त होय छे त्यारे अवस्था रूप होय छे, नीतर शक्ति रूप योग्यता में होय छे, एने धर्म कहेवामां आवे छे,
शक्ति रूप
योग्यता
योग्यता
पर्याय साथे छे, पर्याय साथे सवन छे, गुण साथे सवन,
पर्याय तो अव्यक्त छे, पर्याय पर्याय पण द्रव्य मां तो छे ने,
भले पर्याय पण नथी पण सामर्थ्य रूपे छे, पर्याय नु सामर्थ्य छे द्रव्य मां,
सामर्थ्य रूपे
सामर्थ्य,
आ धर्म ने कया प्रकार
धर्म पण सामर्थ्य रूपे अव्यक्त छे त्यां सुधी सामर्थ्य रूपे, हां द्रव्य नहीं, दृष्टांत लिया जैसे सर्वज्ञ परमात्मा है, ऐसा जानेगा कि ये जीव है, ये इस भव पूरा करके उस गति में जाएगा, तो जो गति में जाएगा, जैसे कोई 3 इंच मनुष्य होने वाला है, सर्वज्ञ उसको तो पता नहीं है मेरा क्या होने वाला है, उसका आयु पूरा हुआ मनुष्य हुआ, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में तो आगे से कहां से आया, अगर इस जीव में मनुष्य होने की योग्यता का ज्ञान, योग्यता का ज्ञान हुआ तो उस बात ज्ञान में आई ना, योग्यता है तो ज्ञान में बात आई ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध से, आधार आधार संबंध से नहीं लेवे तो, निमित्त नैमित्तिक संबंध से वहां योग्यता है इसका ज्ञान हुआ ना, कि ये पीछे अगले भाव में मनुष्य होने वाला है, तो योग्यता वहां पड़ी थी, व्यक्त रूप में नहीं है मनुष्यपणा, तो अव्यक्त रूप में तो है, वो सामर्थ्य रूप है, शक्ति है इसकी, ऐसे मनुष्य होने की इसमें कोई शक्ति है अभी ऐसा।
ભૂતકાળની જે વીતી ગઈ છે, જે ધર્મો વ્યક્ત થઈ ગયા છે, એ ધર્મોને શું વ્યય થઈ ગયા સમજવા?
એને કારણરૂપ યોગ્યતા દ્રવ્યને કહેવામાં આવે છે. જેસે મહાવીર સ્વામી કા જીવ અભી સિદ્ધાલય મેં હૈ, લેકિન કુછ 2500 સાલ પહેલે યે ફલાણે ફલાણે માં બાપ કે પુત્ર થે, એસા આજ ભી ઉસી આત્મા કો લક્ષ્ય મેં લેકર કે, ઉસ સિદ્ધાત્મા કો લક્ષ્ય મેં લેકર કે હમ કહે સકતે હૈ, ઉસ પર વો આરોપ કર સકતે હૈ કે 2500 સાલ પહેલે વો સંસારી થે, ત્રિશલા રાણી કે વો પુત્ર થે. वास्तव में कोई आत्मा का पुत्र नहीं है, लेकिन ऐसा ऐसी एक योग्यता थी कि जिससे ऐसा कह सकते हैं, आज भी कह सकते हैं. कहाँ से कह सकते हैं ऐसा ज्ञान का? कैसे होता है? गे ऐसा है तो ज्ञान है कि गे है नहीं और ज्ञान है?
ये तो है
ना, बस.
अब वो ज्ञेय की स्थिति क्या, जब वो ज्ञेय व्यक्त हो गया है, तो व्यक्त होने के बाद वो वापस व्यक्त होने वाला नहीं,
नहीं है. व्यक्त हो गया फिर वो
वापस व्यक्त होने वाला
नहीं, नहीं है.
तो अब वो ज्ञेय की स्थिति क्या?
द्रव्य रूप है, द्रव्य की योग्यता,
द्रव्य
की योग्यता, द्रव्य रूप है.
तो उसे द्रव्य की योग्यता कहे, और आने वाली योग्यता को क्यों पर्याय की योग्यता कहे?
वो नहीं, अभी द्रव्य की योग्यता है, अभी ये द्रव्य की योग्यता है
आने वाली.
हाँ, लेकिन वो कारण रूप योग्यता है, वो कार्य रूप योग्यता है, इतना फर्क है.
कारण रूप भूतकाल
वाली नहीं, जो अभी होने वाली है
वो कार्य कारण,
वो उसका कारण पड़ा है. जो होने वाली है उसका कारण पड़ा है, और जो हो गई वो तो कार्य समाप्त हो गया है, इसलिए वो कार्य रूप योग्यता हो गई. ऐसा दो प्रकार है. धवल में ये विषय बहुत विस्तार से चला है, धवले के तवला के ग्रंथ हैं हमारे, ये विस्तार से चला है. ये विमलचंद जी थे, बहुत चर्चा निकालते थे इस, इसके.
राम
जी की योग्यता है, धर्म है,
शक्ति नहीं
है, शक्ति नहीं है,
योग्यता है.
जो शक्ति हुए तो राग कभी मिटे नहीं, राग कभी जाए नहीं, शक्ति का नाश नहीं हो सकता. त्रिकाल वैसी के वैसी रहे, उसके नाम शक्ति. जैसे ये लाइटर में अग्नि होती है ना, तो एक उसका सिर्फ अपने गुजराती मैंने तिखारो कहिए छे, तणखो कहिए छे खाली, और हिंदी में क्या कहते हैं, चिंगारी, चिंगारी कहते हैं. एक चिंगारी अपने गुजराती में चिंगारी कहते हैं. एक ज दे चिंगारी महान, वो प्रसिद्ध काव्य छे चिंगारी. शक्ति कितनी है इसमें, चिंगारी में शक्ति कितनी कि पूरी चाहे तो सारे जगत को जलावे, अगर आग लग गई तो. चिंगारी छोटी है, शक्ति छोटी नहीं है इसमें, लेकिन वो शक्ति में, चिंगारी में कोई पीलापन होता है या ब्लू कलर उसका होता है, या बड़ी चिंगारी हुई या छोटी हुई, ये व्यक्ति में होती है, शक्ति में ये बात नहीं होती कभी. आग है वो पीली भी होती है और नीली भी होती है, तो ये अवस्था में पीलापन नीलापन होता है. जो पावर है, शक्ति है, लाइटर में कोई पीलापन ब्लूपन नहीं है, बाहर आवे तो उसमें ये कलर दिखेगा, व्यक्त होने पर, तो अवस्था का धर्म है। तो अवस्था में व्यक्त होता है वहां तक अव्यक्त रहता है, शक्ति में नहीं। ये बात
शक्ति न कोई मर्यादा,
कोई शक्ति ने स्वभाव ने मर्यादा हो सकेज नहीं, એનું નામ સ્વભાવ। જ્યારે સ્વભાવ ઓળખાય છે, જો તમારો પ્રશ્ન કે સ્વરૂપ પહેચાન, સ્વરૂપ કી પહેચાન મે અપના બેહદ સ્વભાવ કા પતા ચાલતા હૈ। ઓહો, મેરા સામર્થ્ય કિતના હૈ, તો ઉતના વજન પડતા હૈ પર્યાય પર, ઉસકા ઉતના વજન પડતા હૈ પહેચાન કરને વાળા। અભી ઉંડા જાના ક્યા બાત હૈ, ઉંડા કા પ્રશ્ન આયા થા, ઉતના ઉતના સામર્થ્ય હૈ, ઉતના બેહદ સામર્થ્ય હૈ કે ઉસકી ગહેરાઈ મે જબ ઉપયોગ લગતા હૈ તો ઉપયોગ કભી થંભ જાતા હૈ। જૈસે કોઈ આશ્ચર્યકારી ચીજ હોતી હૈ તો ઉપયોગ વહાં રુક જાતા હૈ કે, વૈસે યે તો મહાપદાર્થ મહાઆશ્ચર્યકારી હૈ। ઇતના આશ્ચર્ય જગત કે કોઈ પ્રસંગ મેં નહીં હૈ, કોઈ પદાર્થ મેં નહીં હૈ, એસા પદાર્થ અગર પહેચાન હોય તો એક દફે થંભ જાયગા। इसलिए पहचान करने वाले को अनुभव होता ही है, ये इसको अनन्य कारण बताया 751 के पत्र में। संकेत ही बोला है उसको, तो वालुदेव ने तो उसको संकेत ही बोला है। हाँ, उसमें दूसरा प्रकार का संकेत बोला, फिर स्पष्टीकरण कह दिया कि ये निश्चय संकेत का, परमार्थ संकेत का कारण होने से उसको संकेत कहते हैं, लेकिन आप उसको स्वीकार करना। क्या बोले? सर्वज्ञ देव ने ऐसा कहा है, उसका स्वीकार करना, उसका आदर करना, उसका सत्कार करना, उसको सम्मत करना, इतने शब्द लिखा।
स्वरूप समान जब तक ज्ञान में नहीं आता है तो वो जानकारी की भूल है कि अनुभव की भूल है?
ज्ञान में नहीं आता है वो अनुभव की भूल है। जानकारी में तो समझ लिया कि मेरा आत्मा सिद्ध समान है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप ही है, शक्ति रूप है, ऐसा है वैसा है, ऐसा समझ में तो आ जाता है न्याय से, आगम से, युक्ति से, तर्क से, अनुमान से, अनेक लॉजिक से, तो पता चल जाता है। तो समझ में तो हो सकता है, ज्ञान में वो भाष्यमान नहीं होता है। इसलिए वो तो बोला कि स्पष्ट अनुभवन से प्रतीति, अनुभवन से वो प्रतीति होगी, विचार ज्ञान से नहीं। अनुभव पद्धति पे आया ही नहीं, विचार पद्धति पे बहुत जाता है, तर्क पद्धति पे बहुत जाता है। हमारे देवचंद भाई तर्क पद्धति पर बहुत जाते थे, अभी थोड़ा सीमा में आए। बहुत फास्ट क्वेश्चन करते हैं, जवाब दिया नहीं दिया दूसरा क्वेश्चन निकाल देते हैं। अब धीरे धीरे चले, इसमें तो शांति का तो मार्ग है ना।
शांति में टाइम निकल जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है।
ये जल्दबाजी जो है वो अपना ध्येय के प्रति, ध्येय के अनुसरण करके आनी चाहिए। वो उतना बाकी है, पूर्ण होना है, अभी तो कुछ नहीं है, बहुत बाकी है, वहाँ जल्दबाजी कर लो।
जल्दबाजी काम तो आती है।
हाँ, वो भी एक गुण है। एक जगह वो गुण है और जगह वो अवगुण भी हो जाती है। अनुभव भाव मा तो आत्मा मा आत्मा ने निश्चयपणे स्थापीने निर्विकल्प थईने अभेद भावे स्वामी भाव छे। नहीं, आत्मा मा आत्मा ने निश्चयपणे स्थापता तो भेद न पड़े, કથનમાં ભેદ પડે છે, વાચ્યમાં ભેદ નથી, વાચક કથનમાં ભેદ છે। આત્મા માં એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં, અને એમાં આત્મભાવ થવો એટલે પોતાપણાનો ભાવ થવો. જેમ કે આ શરીર મારું છે એ તો જુદું છે, તો કેવો પોતાપણાનો ભાવ થાય છે કે હમણે એક ધડાકો થાય તો આંખ નીચાઈ જાય પહેલા, કેમ કે સૌથી બચાવવાની જે ચીજ છે વિચાર ન કરે કે સૌથી બચાવવાની ચીજ છે, પણ પહેલા આંખ નીચાઈ જાય. પોતાપણું કર્યું છે ને, કેવી રીતે પોતાપણું કર્યું છે આ એક પ્રશ્ન થાય છે. અત્યારે તો પોતાપણું કર્યું છે, પરમા પાટલું પોતાપણું કર્યું છે, કેવી રીતે કર્યું છે? અનુભવને તપાસ, અનુભવને તપાસ કેવી રીતે કર્યું છે મને હું પૂછે? તે જ કર્યું છે તારા અનુભવને તપાસ. કે જો પરમા તું પોતાપણું કરી શકે છે તો તું તારા પોતામાં પોતાપણું કેમ ન કરી શકે? જે રીતે પરમા કર્યું છે વિષય બદલવાનો છે. જે અનુભવ ને ચાલતા અનુભવ ને તપાસવો છે, આપણે ક્યાં વ્યતીત થયેલા અનુભવ ને તપાસવો છે કે નહીં વ્યતીત થયેલા અનુભવ ને તપાસવો છે? ચાલતા અનુભવ ને તપાસવો છે. જે ચાલતો હોય તે ઠંડી નો ચાલતો હોય તો ઠંડી નો હાથનો દરજ હોય તો હાથનો દરજ, જે ચાલુ હોય ને એને તપાસવો છે. ચાલતા વેદન ની તપાસ કરવી છે. તપાસમાં જાઓ પછી આપણે એની ચર્ચા કરીએ કે તપાસવામાં શું તપાસાયું, અથવા તપાસવામાં શું તકલીફ પડી કે ન તકલીફ પડી, તો શું સફળતા મળી. એ વિષય બહુ સારો છે. વેદન અને અનુભવનો વિષય અનુભવની પ્રેક્ટિસ ઉપર ગયા પછી બહુ સારી રીતે બહુ રસિકપણે એની ચર્ચા થાય એવો વિષય છે. પણ એમાં પ્રવેશ કરેલા હોય એને જ એની સમજ પડે છે. કેરી ખાધી હોય એને જ એમ કહેવાય કે હો તમે કેરી ખાધી ને મેં કેરી ખાધી, આપણે એક જ ઝાડની કેરી ખાધી બહુ સરસ હતી કેમ? તો લોકો હા બરાબર સરસ હતી, પણ જે ખાધીનું એને બહુ સરસ હતી કયો તો શું ખબર પડે? આ વિષય એવો છે. બરાબર એ ક્ષેત્રમાં એ સ્ટેજમાં પ્રવેશ કર્યા વિના એ વિષયની ચર્ચા એનું ગ્રેસ્પિંગ નહીં આવે. દીકરીના લગ્ન માથે આવે છે તો છૂટી જાય છે, અહીંયા આવ્યા હોય તો એ વિકલ્પ આવે, જલ્દી જવું છે, હજી આટલા કામ બાકી છે, બધા કામ પૂરા કરવા પડશે, ટાઈમ થોડો છે ને, ટાઈમ થોડો છે ને, કામ જાજા છે, કેટલું માથા ઉપર રહે છે, કેમ નથી છૂટતું? એનું મૂલ્ય છે કે ત્યાં ભૂલ થશે તો ઇજ્જતનો સવાલ છે. આપણા પ્રસંગે દીકરીના ઘરે દીકરીના લગ્ન છે અને એમાં કાંઈ ગડબડ થશે તો ઇજ્જતનો સવાલ છે. એ કેટલો મોટો પહેલેથી ટેન્શન રહે છે, જ્યાં સુધી કામ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી, ત્યાં તો કાંઈ ભૂલી નથી જતા આપણે. અથવા આપણો એવો ભૂલકણો સ્વભાવ હોય તો પાંચ જણને કહી રાખ્યું હોય કે આ કામ જોજો, હું ભૂલી જાઉં તો તમે પાછા સંભાળી લો, એટલી દરકાર છે. મૂલ્ય ઉપર આધાર છે, આપણું વજન કેટલું છે એના ઉપર એ વાત ટકે છે. આપણું પહેલેથી વજનનું હોય તો ટકવાની નથી વાત, જેટલું મૂલ્ય આપ્યું હોય એટલું જ વજન રહે. અશુદ્ધ પરિણામ ગયા અને શુદ્ધ પરિણામ થયા, પૂર્વ પર્યાયનો વ્યય થયો અને ઉત્તર પર્યાયમાં નવો ભાવ થયો, તે કાળના પરિણામ સાથે વસ્તુ તન્મય છે, તદ્રુપ છે. તો પૂર્વ પર્યાયનું કારણ નથી, પોતાના પર્યાય ધર્મથી તેવા ભાવરૂપ પરિણમે છે. તો પુરુષાર્થ ત્યાં શું રહ્યો? શુદ્ધ ભાવ રૂપે વસ્તુ પરિણમી ત્યાં કારણ શું રહ્યું? એટલે આમાં શું છે કે પુરુષાર્થ પણ સાથે કામ કરે છે અને શુદ્ધ ભાવ થવો એ પણ એનો એટલે જુદા જુદા ફેક્ટર છે. એ તો વસ્તુનો શુદ્ધ પરિણમન થવાનો તે સકાળ હતો. એકચ્યુઅલ શું પ્રશ્ન છે એ આમાં સ્પષ્ટ નથી થતો કે પુરુષાર્થ ત્યાં શું રહ્યો, પણ તો પુરુષાર્થ ગુણ નહોતો, વીર્યગુણ નહોતો પરિણમતો, અશુદ્ધ પરિણમ્યો ત્યારે અશુદ્ધપણે વીર્યગુણ પરિણમતો હતો, શુદ્ધપણે પરિણમ્યો ત્યારે શુદ્ધ વીર્યગુણ ને શુદ્ધ પર્યાય થઈ પુરુષાર્થનું પરિણમન તો નિરંતર ચાલુ છે. કોઈ એમ કે છે કે તમારા પુત્ર ઉપર તમે પ્રેમ કરવા પ્રેમ કરતા શીખો, ચાલો તમારે ટ્યુશન આપવા પડે છે એના કઈ ક્લાસમાં જવું પડે છે, પુત્ર ઉપર પ્રેમ રાખો, આપણે આપણા પરિવાર ઉપર પ્રેમ રાખો, સહેજ જ આવે છે તેમાં પુરુષાર્થ નથી, પુરુષાર્થ નથી, સહેજ જ છે પુરુષાર્થ. એમ આત્મા અનંત સુખનું ધામ છે એના ઉપર જે વેગ આવે છે તો ઓહો આવો મારું સ્વરૂપ છે, સહેજ જ છે. પુરુષાર્થ એક વેગ છે, પરિણામ ની અંદર એક જોશ છે અને પુરુષાર્થ કહીએ છીએ. મેળ હોય તો વ્યવહાર કરવામાં આવે, મેળ હોય તો નહીતર પૂર્વ પર્યાય મિથ્યાત્વ બની હોય, ઉત્તર પર્યાય સમ્યક બની હોય, ક્યાં એને વ્યવહાર કરવો? અને કોઈ પડે ત્યારે પૂર્વ પર્યાય સમ્યક બની હોય અને ઉત્તર પર્યાય મિથ્યાત્વ બની હોય, ક્યાં વ્યવહાર કરવો? અને કારણકારી લાગુ ના પડે, સદ્રષ્ટા ગુણ કારણકાર્ય કહેવાય, મેળ ખાતો ખાતો તો કારણકારી બોલવાનું સ્વતંત્ર હોય બિલકુલ સમય સમય. આપણે જોવું શું છે કે આપણે કૃપાળુદેવ ના સંસ્થામાં જઈએ છીએ ને ત્યાં એવી પદ્ધતિ છે, મહાવીર ભગવાન ને જઈ બોલાવવાનું, પછી કૃપાળુદેવ બોલાવવામાં આવે છે, પેલા ભગવાનને જઈ બોલાવવામાં આવે છે. આપણે ત્યાં એ પદ્ધતિ નથી, આપણે ત્યાં ભગવાનને જઈ જ લગભગ બોલાવતા, ગુરુદેવ કે માતાજીને જઈ બોલાવવાનું બોલાવવા થઈ જાય.
ત્યારે એમ કીધું હતું કે શંકર ભગવાન ને આપણે ગુરુ પદે જ સાચી વાત કરીએ છીએ, સદગુરુ જે કહીએ છીએ શંકર ભગવાન ગુરુ ના સ્થાને જ છે.
એ આર્ગ્યુમેન્ટ ગમે તે કરીએ, વ્યવહાર તો વ્યવહાર છે, ધીસ ઇઝ આર્ગ્યુમેન્ટ.
લક્ષ્મણ
તો બી વેરી ફ્રેન્ક, આપણે તો આપણે સુધારો કરવા જેવો હોય તો કરી લેવો જોઈએ સરળતાથી, હું તો એમાં સરળતામાં માનું છું. સારી વાત છે, એટલે જે રૂઢીમાં ચાલતું હોય એ પ્રમાણે ચાલે. હવે રૂઢીમાં શું ફેર થાય કે કોઈનું ધ્યાન જાય એમ લાગે કે નહીં આ વાત યોગ્ય છે, ફેરફાર કરવાનું તો રૂઢિ બદલાઈ જાય, એમાં તો બદલી શકે એવું છે.
હા
તો રોટી થઈ ગઈ છે.
તો કઈ મનમાં સમજો કે પાલિકાના જતા હોય તો કે કોઈ છોડો સાંભળશે કે દેરા હશે આવતા જ હતો. કોઈક વાર એ લોકો આમ પણ આપણું સમજાતું હોય ને એમાં એ લોકો ઊંધું આપણને તો કંઈ એવું હોય
જ નહીં. વાત તમારી સાવ સાચી છે. એટલે એમાં કઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા જેવું તમારી વાત સાચી.